नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक अग्रणी भागीदार के रूप में उभर रहा है। देश भर में जनगणना 2027 का पहला चरण कल से शुरू होगा। घर घर जाकर सूचीकरण और स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होगी। प्रदेश में नए वित्तीय वर्ष में 262 स्थानों पर 591 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा का कला, विज्ञान और वाणिज्य वर्ग का परीक्षा परिणाम घोषित। और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश हुई, कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के साणंद में केन्स सेमीकंडक्टर के OSAT संयंत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र में होने वाला उत्पादन सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि साणंद स्थित इस संयंत्र में निर्मित चिप्स अमरीका तक पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक अग्रणी भागीदार के रूप में उभर रहा है।
हर भारतवासी के लिए गर्व का पल है। आने वाले दिनों में भारत की बहुत सारी कंपनियां ग्लोबल कोलैबोरेशन के माध्यम से दुनिया को एक रिजिलिएंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन देने जा रही है। आज का ये दिन मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस मंत्र को सही मायने में चरितार्थ करता है। इस प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन शुरू होने से भारत ग्लोबल मार्केट में एक भरोसेमंद सेमीकंडक्टर सप्लाई के रूप में अपना रोल और सशक्त कर रहा है।
श्री मोदी ने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे भारत की सेमीकंडक्टर की आवश्यकता देश के भीतर से ही पूरी हो सके। इस संयंत्र के उद्घाटन से भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग को नई गति मिलने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्स के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा पहले ही बुक हो चुका है। गौरतलब है कि संयंत्र के सभी चरण पूरे होने पर इसकी उत्पादन क्षमता रोजाना 6.33 मिलियन यूनिट होगी। वहीं श्री मोदी ने गांधीनगर के कोबा में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन भी किया। ये संग्रहालय जैन इतिहास, सम्राट संप्रति के जीवन, उनके शासन और अहिंसा के संदेश को समर्पित है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये संग्रहालय देश की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को नई पहचान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
आज दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह विश्व अस्थिरता और अशांति की आग में झुलस रहा है, इस म्यूजियम की विरासत, इसका संदेश केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए बहुत अहम है। हमारा प्रयास होना चाहिए दुनिया के देशों से यहाँ आने वाले जिज्ञासु, स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स की संख्या और बढ़े।
देश भर में जनगणना 2027 का पहला चरण कल से शुरू होगा। इस चरण में पूछे जाने वाले 33 प्रश्नों को सरकार ने अधिसूचित किया है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने बताया कि जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में घर घर जाकर सूचीकरण और स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होगी। ये चरण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार 30 सितंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि जाति आधारित गिनती जनगणना के दूसरे चरण में की जाएगी। श्री नारायण ने विदेश में रहने वाले भारतीयों की इस जनगणना में भागीदारी करने के तरीकों को भी स्पष्ट किया।
प्रथम चरण बेसिकली मकानों की गणना और मकान सूचीकरण है। इसमें अगर बाहर रहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दूसरे चरण में जब एक व्यक्ति की गणना कराते हैं तो उसमें जो बाहर रहने वाले हैं उनको एम्बेसी के माध्यम से उनकी गणना कराने की व्यवस्था है।
आगामी नए वित्तीय वर्ष में प्रदेश के 262 स्थानों पर 591 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 81,12,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की है। इससे राज्य में ईवी चार्जिंग के आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी, साथ ही ग्रीन एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के तहत प्रदेश में नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भारत सरकार के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। योजना के तहत राजधानी जयपुर में 112, अजमेर में 49, उदयपुर में 39 तथा कोटा में 28 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 34 चार्जिंग स्टेशन राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर स्थापित किए जाएंगे। इससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ईवी उपयोगकर्ताओं को सुविधा मिलेगी। नए वित्तीय वर्ष में कल से प्रदेश भर में राजस्व न्यायालयों में लंबित मुकदमों के शीघ्र और समयबद्ध निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस संबंध में सभी तहसीलों, उपखंड और जिला तथा संभाग स्तरीय राजस्व अधिकारियों को विशेष टास्क दिए गए हैं। इस बारे में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने राजस्व अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके अनुसार राजस्व अधिकारियों को प्रत्येक कार्य दिवस को 4 घंटे नियमित न्यायालय संचालन के निर्देश दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE की 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आज घोषित कर दिया गया है। कला वर्ग का परिणाम 97.54% रहा, जबकि विज्ञान वर्ग का 97.52 और वाणिज्य वर्ग का 93.64% रहा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये परिणाम जारी किए। शिक्षा मंत्री ने उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। प्रदेश के दौसा और करौली जिलों में भी अब किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इन दोनों जिलों को निर्बाध बिजली आपूर्ति से जोड़ने के बाद प्रदेश के कुल 24 जिलों में दिन के समय कृषि कार्य के लिए विद्युत आपूर्ति सुलभ होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस संबंध में सोशल मीडिया पोस्ट पर यह घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली देने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में परिवर्तित बजट में ये कार्य चरणबद्ध रूप से साल 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस फैसले से दौसा जिले में करीब 52,000 से अधिक और करौली जिले में 35,000 से ज्यादा कृषि उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। गौरतलब है कि दोनों जिलों में पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए और सी में 32 मेगावाट क्षमता के 17 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने राजस्थान सहित 5 राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 15वें वित्त आयोग के अतिरिक्त अनुदान जारी किए हैं। ये अनुदान जमीनी स्तर पर शासन को सशक्त बनाएंगे और पंचायती राज संस्थाओं में आवश्यकता आधारित स्थानीय विकास को सक्षम बनाएंगे। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील के गनेड़ी गांव में मिट्टी ढहने से 3 बच्चों की मौत हो गई। ये बच्चे गांव में मिट्टी के टीले पर खेलने के लिए गुफा बना रहे थे, इसी दौरान मिट्टी ढह जाने से ये हादसा हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज भी भगवान महावीर की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कई शहरों में सुबह प्रभात फेरी निकालकर महावीर स्वामी के संदेश को आत्मसात किया गया। सवाईमाधोपुर में जिला मुख्यालय पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया। पाली में निकाली गई शोभा यात्रा में भगवान महावीर से जुड़ी झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। चित्तौड़गढ़ में भी विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। सिरोही, चूरू और झुंझुनू में भी भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव श्रद्धा और आस्था से मनाया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज भी पश्चिमी विक्षोभ का असर बना हुआ है। शेखावाटी क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गईं। सरहदी और उत्तरी जिलों में भी आज कहीं कहीं हल्की बारिश होने से मौसम सुहावना बना हुआ है। श्रीगंगानगर जिले में आज कई स्थानों पर बारिश हुई और अनूपगढ़ क्षेत्र में ओले गिरे। 20 LM लूनिया में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोग झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। हनुमानगढ़ जिले में कई स्थानों से हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। खैरथल तिजारा जिले में भी कई स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि हुई। डीग जिले में भी कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि के समाचार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक डॉ. राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 2 दिन बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार हैं।
एक और नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ 2 अप्रैल को दोपहर बाद शाम के समय से ही कुछ भागों में एक्टिव होगा और इस सिस्टम का सर्वाधिक असर 3 और 4 अप्रैल को राज्य के कई भागों में देखने को मिलेगा। इस दौरान जोधपुर संभाग, इसके अलावा बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में 3 और 4 अप्रैल को तेज मेघ गर्जन, तेज आंधी के साथ में कहीं कहीं फिर से हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड होंगी।
इस बीच मौसम विभाग ने किसानों को तैयार फसलों, कृषि मंडियों और धान मंडियों में खुले में रखे हुए अनाज तथा जिंसों को ढकने या सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूंजी बाजार में निवेश संबंधी अपने नए नियमों को 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। संशोधित समय सीमा अब 1 अप्रैल के बजाय 1 जुलाई 2026 को लागू होगी। आरबीआई ने कहा कि यह निर्णय बैंकों, पूंजी बाजार मध्यस्थों और उद्योग निकायों के अनुरोधों के बाद लिया गया है। इन संस्थानों ने कुछ परिचालन संबंधी मुद्दों पर अधिक समय दिए जाने और स्पष्टता की मांग की थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक अग्रणी भागीदार के रूप में उभर रहा है। देश भर में जनगणना 2027 का पहला चरण कल से शुरू होगा। घर घर जाकर सूचीकरण और स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होगी। प्रदेश में नए वित्तीय वर्ष में 262 स्थानों पर 591 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा का कला, विज्ञान और वाणिज्य वर्ग का परीक्षा परिणाम घोषित। और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश हुई, कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के समाचार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।